శ్రీల ప్రభుపాద కీ జయ. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుర్ ఉన్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సబ్సే పహలే పండర్పూర్ కా నామ జో హై వో దక్షిణ ద్వారకా భీ కహా జాతా హై, దక్షిణ కాశీ భీ కహా జాతా హై, ఔర్ మహారాష్ట్ర మే ఉస్కో అధ్యాత్మిక రాజధాని కహతే హై, ద స్పిరిచువల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. फिर क्या क्या नाम है उसके देखो, पंडरपुर, पंडरी, पांडुरंगपुर, पंडरीपुर, पौंडरी क्षेत्र, पंडरगे, पांडुरंगपल्ली, ये साउथ इंडियन नाम है. फिर ये भीमा नदी के किनारे में है तो निश्चित सबको पता है. यहाँ की विशेष बात ये है कि जैसे तिरुपति है, श्रीरंगम है और बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र हैं, वहाँ भगवान को छूने का अपने को अधिकार नहीं है. जो वहाँ के गोस्वामी हैं, वहाँ के पुजारी हैं, वही उसको छू सकते हैं. तो दो ही ऐसे भगवान हैं जो बड़े कृपालु हैं, एक है जगन्नाथ जी और एक है पांडुरंग जी. लेकिन जगन्नाथ जी का अभी आलिंगन देना बंद हो गया है. एक नंबर पे थे जगन्नाथ जी पहले, सबको गले लगाने के लिए परमिशन देते थे. हमने वार्षिक भानवी को भी गले लगाया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रथ पे चढ़ा के, बोलो. बहुत देर तक सुभद्रा जी को आलिंगन दिया, जगन्नाथ को दिया, फिर उसके बाद में फिर कुछ हो गया, उसके वजह से अभी रद्द हो गया. वो कोरोना के पहले दो महीने दो साल से बंद हो गया. और आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि अभी चैतन्य महाप्रभु कहानी बताई देते हैं, चलो आ गया तो. सो चैतन्य महाप्रभु ने पंडरपुर को भेंट दिया है और उसकी कहानी ऐसी है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल में संन्यास लिया और नवद्वीप छोड़ा और वो जगन्नाथपुरी चले गए. जगन्नाथपुरी चले गए और वहाँ से वो अपने भाई विश्वरूप को ढूंढने के बहाने दक्षिण भारत की यात्रा में निकले. तो आदिलीला समाप्त होती है संन्यास पे और मध्यलीला का आरंभ होता है दक्षिण भारत की यात्रा में. तो बहाना था भाई को ढूंढने का, लेकिन कृष्ण नाम हरिनाम संकीर्तन का वितरण करना था उनको. तो वो करते 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 पूरा तिरुपति, कांची, मदुराई, श्रीरंगम करके ऊपर महाराष्ट्र में आए और महाराष्ट्र में वो पंडरपुर आए. पंडरपुर आए तो क्या क्या किया वो तो इम्पोर्टेंट है. हाँ, 1, 2, 3, 4 steps. सबसे पहले उन्होंने चंद्रभागा में स्नान किया. जिस प्रकार से स्नान किया आनंद विभोर होकर, जितने भी चैतन्य जितने भी चंद्रभागा में लोग थे उस समय, वो स्वयं भी भाव विभोर हो गए और उनको देखकर अपना काम छोड़ के उनके पीछे भागने लगे. उन्होंने स्नान किया और सीधे विट्ठल जी के मंदिर में नृत्य करते हुए, बहुत लोगों को लेकर नृत्य करते हुए गए. और वहाँ पर गए तो उन्होंने सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने विट्ठल जी के चरण छुए, फिर विट्ठल जी को आलिंगन दिया, बहुत देर तक आलिंगन देकर अश्रु बहाए और फिर जो मंडप है उसके सामने वहाँ पर धुआंधार कीर्तन किया उन्होंने. वो कीर्तन करते 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 बहुत सारे लोग उसमें जुड़ गए, तो एक ब्राह्मण भी जुड़ गया. तो उस ब्राह्मण ने बहुत नम्रता से उनको कहा कि हमारे घर में प्रसाद के लिए आइए. महाप्रभु उनके घर में प्रसाद गए, प्रसाद के लिए गए. प्रसाद जब ले रहे थे, थोड़ी बातचीत हो रही थी, तो प्रसाद में पता चला कि रंगपुरी नाम के बहुत महान संत जो है वो इसी समय पंडरपुर में आए हुए हैं. तो महाप्रभु जी बहुत आनंदमय हो गए और कहा मुझे ले चलो उनके पास. तो वो रंगपुरी के पास गए. रंगपुरी जी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, यानी ईश्वरपुरी के गुरु भाई हैं, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के काका गुरु हैं, गुरु जी के गुरु भाई हैं. तो वो उनके पास गए, महाप्रभु जी ने दंडवत प्रणाम किया उनको, फिर रंगपुरी ने उनको गले लगाया बहुत से, कहते हैं कि उनको गोद में बिठाया रंगपुरी जी को. रंगपुरी जी ने महाप्रभु को गोद में बिठाया और फिर रंगपुरी जी का वार्तालाप शुरू हुआ. तो उनको पता चला बात करते करते कि मेरे गुरु जी के गुरु भाई है. फिर दोबारा दंडवत प्रणाम किया. फिर उन्होंने पूछा आप कौन से गांव से हो, तो महाप्रभु जी ने कहा कि मैं नवद्वीप से हूँ। जैसे नवद्वीप का नाम लिया कि रंगपुरी जी के नवद्वीप की यादें सब ताज़ा हो गई। रंगपुरी जी ने कहा कि मैं माधवेंद्रपुरी जी के साथ में गया हूँ नवद्वीप। उस समय मैं उनके एक ब्राह्मण के घर पर गया था, उसका नाम था जगन्नाथ मिश्रा, उसकी पत्नी का नाम था सच्ची माता। उनके घर पर मैं गया था और वो क्या कहें उस माता के बारे में, वो तो जगन माता थी, इतना वात्सल्य था, इतना प्रेम था उसके अंदर। उसने मेरे लिए केले के फूल की सब्जी बनाई थी और बंगाल के शाक बनाई थी, लेकिन केले की सब्जी मुझे जितनी याद है उतनी स्वादिष्ट थी, और अपने हाथ से प्रेम से खिलाई, बालक की तरह वात्सल्य से खिलाई। उनको ना एक बालक था, उसका नाम विश्वरूप था, और वो बालक है ना, मुझे पता चला बातचीत में कि वो छोटे उम्र में घर छोड़ के चला गया था और आगे जाकर उसने संन्यास लिया। उसका नाम पड़ा शंकरारण्य स्वामी, और वो शंकरानंद स्वामी जो थे वो पंढरपुर में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और ये भी बताया कि पंढरपुर में आने के बाद शंकरानंद स्वामी को आध्यात्मिक साक्षात्कार परिपूर्ण हुआ उनका, तो यही परिपूर्णता को प्राप्त करके यही जिन्होंने देह त्याग दिया। तो उसमें महाप्रभु बहुत गदगद हो गए, एक प्रकार से बाह्य कारण से जो खोज रहे थे भैया को उसके बारे में पता चला उनको, लेकिन दर्शन तो नहीं हुआ। कहते हैं उस समय यहाँ पर विश्वरूप के चरण कमल का स्थान था एक, लेकिन वो अभी नहीं मिला किसी को, अभी अदृश्य है वो। तो उसमें महाप्रभु ने कहा कि मैं जगन्नाथ मिश्रा का ही बेटा हूँ, मेरी माँ है सच्ची माता और मेरे बड़े भाई हैं। तो फिर गले लगा कर बहुत रोए वो, और उसके बाद में फिर रंगपुरी जी चले गए। तो ये सब बातें मैं अभी क्यों बताई, क्योंकि महाप्रभु जी ने विट्ठल जी को आलिंगन दिया था, लेकिन 1873 में किसी व्यक्ति ने लोहे का चिमटा विट्ठल जी को मारा और किसी व्यक्ति ने उनके पैर पर पत्थर मारा, तब से फिर वो आलिंगन देने की प्रथा बंद हो गई, भगवान को आलिंगन देना बंद कर दिया उन्होंने। फिर भी भगवान के चरण कमल सबको उपलब्ध हैं, यहाँ तक कि उनके चरण कमल है ना थोड़े खिस भी गए हैं, आप देखेंगे उनके चरण कमल, लोगों का मत्था टेक टेक के टेक टेक के उनके चरण कमल जो है वो घिस गए। मैंने देखा उसके राइट लेग में एक होल भी था, ऐसा है, तो ये रिपेयर करना मुमकिन नहीं उसके लिए। तो ऐसा ये पंढरपुर का दूसरा महात्म्य हो गया। तीसरा महात्म्य हो गया कि तुकामणि अम्मा अनाथाम कारणे पंडरी केडी निर्माण देवे। तुकाराम महाराज का भाव क्या है कि वो अपने आप को अनाथ अनुभव करते हैं, कहते हैं मुझ जैसे अनाथ भाव के लोगों को संवारने के लिए वहाँ पर पंडरी भगवान ने निर्माण की है। फिर उसके बाद में चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि पौंडरिकम इति ख्यातम तीर्थक्षेत्रम च पूजितम पांडुरंगांश तत्रास्ते मूर्तिमान देवतोत्तमः अर्धयोजन विस्तीर्ण तदर्धायमा सम्मितम। भीमा नदी के क्षेत्र पे का किनारे पे पौंडरिक नाम का एक क्षेत्र और तीर्थ है, इसमें साक्षात भगवान मूर्ति रूप में निवास करते हैं। ये अर्धालोजन लंबा है और आधा योजन चौड़ा है। क्षेत्राणाम परमम क्षेत्र, पांचवी बात यह है कि गंगा यमुना के बीच में सबसे श्रेष्ठ विष्णु क्षेत्र है ये। बहुत सारे विष्णु क्षेत्र हैं लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो है पौंडरिक। पांचवी बात, छठवीं बात यह है कि यहाँ पर विट्ठल भगवान कटी पर हाथ रखते हुए भीमा नदी के किनारे में खड़े हैं, पद्म पुराण में लिखा है ये बात, और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं सबको। सातवीं बात शंकर महाराज कह रहे हैं, शंकर जी भगवान पद्म पुराण में कह रहे हैं, पांडुरंग महात्म्य में क्या कह रहे हैं, क्या कहूँ मैं इसके बारे में, हे नारद मुनि पृथ्वी आकाश पाताल इन तीन ही स्थानों पर पंढरपुर के बराबर का कोई क्षेत्र नहीं है। फिर सातवीं बात हो गई ना, अभी आठवीं बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंढरपुर में ना नाम के लिए भी दुख नहीं है, मराठी में ऐसा कहने की पद्धति है, औषधाला पण दुख नहीं है। इतने औषध कैसा होता है ना, बहुत कम होता है, हम लोग पेट भर के दवा खाते क्या, नहीं खाते ना, औषध छोटी मात्रा में खाते हैं, इसलिए वो एक मराठी में कहने का तरीका है कि दवा के लिए भी यहाँ पर बीमारी नहीं है, दुख नहीं है। सदा सर्वकाल सुख है यहाँ पर। यहाँ पर व्यवसाय में नुकसान नहीं होता है, यहाँ पर नुकसान बिजनेस में कभी होता नहीं है, यहाँ पर प्रेम सुख की लाभ की प्राप्ति होती है, ऐसे बताएं। तो विशेष बात क्या है, यहाँ पर दुख नहीं है और प्रेम प्राप्त होता है। फिर नौवीं बात, चंद्रभागे का दर्शन, देखिए ध्यान से सुनिए, चंद्रभागा नदी का दर्शन करते ही सभी तीर्थों का दर्शन लेने का लाभ होता है, केवल चंद्रभागा को निहारने से। अगर बस में भी जा रहे हैं आप और आपका नदी में स्नान करने का प्लानिंग नहीं है, तो बस में भी आपने देखा नदी को, तो भी आपको सभी तीर्थों को दर्शन करने का लाभ मिलता है। और पांडुरंग का वास्तव्य जिस पंडरी में है, उसको देखते ही, उसमें आते ही सभी पाप 10 दिशा में भाग जाते हैं। हरे कृष्णा। फिर दसवां पॉइंट क्या है कि मराठी में एक वर्ड है येरझारा। येरझारा मतलब क्या? आना जाना यहां निरंतर, आना जाना यहां निरंतर, कोई नहीं परमानेंट, उसको कहते हैं येरझारा, जाना आना। हम लोग अभी कॉलेज में भी कहते थे ना, जो बार बार होते हैं ना फेल, उनको हम कहते थे आषाढ़ी वारी यानी कार्तिकी वारी। एक एग्जाम अप्रैल में, एक एग्जाम अक्टूबर में, तो आम्ही विचारायचं होतं ना नापास झालेलं ना, किती वारं केल्या, आषाढी केली कार्तिकी केली, असं विचारायचं। अक्टूबर एप्रिल ऐसा, तो उसको कहते येर धारा, जात राणी येत राणी, जात राणी येत राणी। सो तुकाराम महाराज कहते हैं कि जन्म मरणाची येर झार जी आहे ती पंढरपूरला आल्याने समाप्त होते। जन्म मृत्यू के जो जाना आना निरंतर चलते रहते ना, वो पंढरपूर का होने से, पंढरपूर में आने से, पंढरपूर निर्माण होने की वजह से वो जन्म मरण का येर झार जो है वो समाप्त हो जाती है। सब भगवान भी मिलकर, जितने भी देव हैं वो सब मिलकर पंढरपूर में आने के लिए धड़पड़ करते रहते हैं, ऐसा भी लिखा है। फिर इलेवेंथ बात जो मैंने आपको उस दिन कल की कथा में मैंने थोड़ा अधूरी रह गई थी कि पंढरपुर जो है वो त्रिकोणात्मक क्षेत्र है। देखो हर धाम में ना एक बाह्य वस्तु होती है और एक गुप्त वस्तु होती है। बाह्य वस्तु सबको देखते हैं, समझता है नहीं समझता है वो बात अलग है, लेकिन गुप्त वस्तु जो है वो संतों की कृपा से समझ में आती है। गुप्त वस्तु का एक दर्शन, गुप्त वस्तु का अनुभव तो सबको नहीं होता है। तो ये क्षेत्र जो है वो त्रिकोणात्मक है, इसमें एक कोने में विठ्ठल जी है त्रिकोण के, दूसरे कोने में पुंडलिक महाराज है और तीसरे कोने में लक्ष्मी देवी बैठी हुई है, लक्ष्मी तीर्थ कहते हैं उसको। तो ये त्रिकोण में एक गुप्त वैकुंठ है, वो गुप्त वैकुंठ में एक गुप्त बिंदु सरोवर है और उस बिंदु सरोवर में विठ्ठल जी का मंदिर है। तो कल मैं जो मेरे साथ थे उनको मैं बार बार याद कर रहा था कि आप जहाँ खड़े हो ना अभी ये बिंदु सरोवर में आए, विठ्ठल जी एक कोने में है, दूसरे कोने में पुंडलिक जी है, तीसरे में लक्ष्मी जी है, उनका अलग मंदिर लक्ष्मी तीर्थ नाम का। यहाँ पर ना कम से कम 50 से 60 तीर्थ हैं, तो सब लुप्त हो चुके हैं, कुछ कुछ ही बचे हुए हैं। कुछ कुछ हैं जैसे शंकर जी का मंदिर है, देवी का मंदिर है, सब कुछ है, लेकिन बहुत सारे तीर्थ नष्ट हो चुके हैं। जैसे देखो पद्म तीर्थ, कुंडल तीर्थ, जाबली तीर्थ, संघर्षण तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, कलश तीर्थ, पितृ तीर्थ, चक्र तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ है, संगम तीर्थ, सूर्य तीर्थ, अभी आप जाके आए सोम तीर्थ, सरस्वती तीर्थ, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं यहाँ पर। लेकिन काल कैसा होता है ना, कलयुग में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। आप यहाँ के लोगों को पूछो कोई नहीं बताएगा आपको किधर स्नान क्या है, बाहर के लोगों को ज़्यादा पता होता है। तो मेरा ये कहना था कि पंढरपुर में गुप्त वैकुंठ है त्रिकोण के अंदर, उस त्रिकोण के अंदर गुप्त वैकुंठ में बिंदु सरोवर है और बिंदु सरोवर में विठ्ठल जी बैठे हुए हैं। अश्रद्धालुओं को बिंदु सरोवर के बारे में बताना नहीं चाहिए, ऐसे कहा है, जिसको श्रद्धा नहीं है। ये तेजोमय प्रकाशमान क्षेत्र जो है उसके अंदर भगवान विराजमान है। फिर 12वां गौरव, बिंदुस्तान परम गुह्य स्थान है, केवल ज्ञानी और प्रामाणिक भक्तों को ही इनका दर्शन होता है। नासिक तथा दुष्ट लोगों को, नास्तिक तथा दुष्टों को इसके बारे में बताना नहीं चाहिए। 12वां पॉइंट। 13वां पॉइंट है कि इसी एक ही क्षेत्र में सारे 12 शंकर के ज्योतिर्लिंग जो है वो उपस्थित हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है, कौन कौन से नाम तो लेना जरूरी है बहुत यहाँ बैठकर। काशी विश्वेश्वर, रामेश्वर, मल्लिकार्जुन, अमृतेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, कोटेश्वर, सोमेश्वर, घृणेश्वर, बलेश्वर, परली, वैजनाथ, उज्जैनी, महाकालेश्वर और केदारेश्वर यानी केदारनाथ। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग जो है एक ही स्थान में विराजमान है। 14वां महात्म्य, अभी आप गए थे ना आज 14वां, आप गए थे कहाँ, संध्या वाले क्षेत्र में गए थे ना, तो वो पंडरपुर का पूर्व द्वार है। दक्षिण द्वार जो है मासनूर है, यहाँ पर शिवलिंग है, सिद्धेश्वर महादेव उनका नाम है, और वहाँ पर हम लोग शायद गए थे, भीमा और पुष्पावती नदी का संगम है वहाँ पर, भीमा और पुष्पावती नदी का संगम है, उसका नाम है मासनूर, वो दक्षिण द्वार है। पश्चिम द्वार में भुवनेश्वरी देवी है, और जो उत्तर द्वार है वहाँ पर महिषासुर राक्षस का नाश करने वाली भगवती दुर्गा दुर्वा देवी है, और उत्तर दिशा में भीमा और भरणी नदी का संगम है। 14वीं बात हो गई। 15वां गौरव, इसमें 4 अंतर द्वार है। पश्चिम में करवीर, ये लक्ष्मी का स्थान है, दक्षिण में शूर्पालय यानी सांपों का स्थान, शंकर महाराज का स्थान है, पूर्व में त्रिविक्रम भगवान, और उत्तर में नरसिंह भगवान जहाँ विष्णु नरसिंह रूप में रहते हैं। ये 15वां महात्म्य हो गया। 16वां महात्म कि यहाँ पर 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, 4 वस्तुएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो ये हैं क्षेत्र यानी पूरा धाम, तीर्थ यानी अर्थात तीर्थ यानी चंद्रभागा का किनारा, उसको तीर्थ कहते हैं, और भगवान और भक्त भगवान का। तो सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र यानी पंडरपुर धाम, पंडरी नगरी, तीर्थ यानी चंद्रभागा का किनारा, दैवत यानी विठ्ठल भगवान, और भक्त यानी पुंडलीक, ऐसे यहाँ पर महात्म्य है। नारद मुनि को शंकर जी बता रहे हैं कि ये क्षेत्र जो है इसका ना भूमि से कोई संबंध नहीं है, एक विमान है ये वीत भर यानी ये जो है ना, क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं उसको, इतने भूमि के ऊपर है ये विमान की तरह। अभी आप पृथ्वी पर नहीं हो, वह विमान में बैठे हो, वैसा ही तिरुपति भी है, वैसा ही वृंदावन धाम भी, वैसे भी अयोध्या भी वैसा ही है। अयोध्या का तो ऐसा है कि अयोध्या के नीचे सुदर्शन चक्र बैठा हुआ है, उसके ऊपर अयोध्या जी विराजमान है। चक्र आम साधारण तौर पे सदस्य चक्र रहते हैं, उनके ऊपर ही क्षेत्र जो है वो विराजमान होता है। तो यहाँ पर ये क्षेत्र जो है वित भर ऊपर है, जैसे प्रकाशमान तेज रूपी देवताओं के विमान आकाश में रहते हैं, वैसे ही आकाश में है। और शंकर ब्रह्मा जैसे सारे देव, सनकादिक ऋषि, आप उसको मत देखो ना, ये सब यहाँ पर निवास करते हैं। ओके, 18वां महात्म्य, ध्यान से सुनिए, कभी जीवन में मौका मिला तो उसको करना। वही महात्म्य मायापुर का भी है, आषाढ़ी एकादशी के दिन यहाँ पर आना, नंबर 1, चंद्रभागा में स्नान करना, एकादशी का उपवास करना और विठ्ठल का दर्शन करना, ये अगर कोई करता है ना तो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। हाँ? है ना, तो वो जब आषाढ़ी का दशम आते हैं, सेवा करते कि नहीं करते हैं? सेवा करते ना, उपवास। देखो उसमें ऐसा है, आपको आगे की बात बताता हूँ। एकादशी के दिन देवता लोग स्नान नहीं करते हैं, द्वादशी के दिन देवता लोग स्नान करते हैं, तो द्वादशी का भी स्नान का यह महत्व है। और सेवा जब भी होते हैं ना, वो सुबह 5 बजे सेवा शुरू नहीं होती है, सेवा 6, 6:30, 7 बजे शुरू होती है, या किसी की नाइट ड्यूटी हो तो दिन में फ्री होते हैं। 24/7 कोई सेवा नहीं करता है। तो आपकी सेवा के आरंभ में या सेवा के अंत में आप जाके स्नान करके आ सकते हैं। हमारा जो सेवा का स्थान है ना, 2 मिनट चंद्रभागा से है, 2 मिनट। आप 15 मिनट में डुबकी लगा के आ सकते हैं, और 15 मिनट तो आपको तो ब्रश करने को लगते हैं। ये सब होता हो सकता है, हो सकता है, होता है, लोग करते भी हैं सब, ठीक है। तो आषाढ़ी आषाढ़ शुक्लई एकादश मा पोष्य हरिमर्चयेत पांडुरंगे स्थितम देव यह स मुक्तिम आव आपनुयात। फिर वही कार्तिकेतु स्थिते पक्षे एकादश्याम विशेषता पूजयेत गोपवेशम तम पांडुरंगे स्थिते हरिम। आषाढ़ी और कार्तिक दोनों में, दोनों शुक्ल एकादशी को जो स्नान करता है, यहाँ पर आके व्रत रखता है, यहाँ पर आके व्रत रखता है, यहाँ पर आकर सेवा करता है, यहाँ पर दर्शन करता है भगवान का, तभी क्या करे, दर्शन के लिए 56 घंटे लगते हैं। तो सब जगह पर दर्शन टीवी पर उपलब्ध होता है। हमारे कैंप के बाहर ही बड़ा स्क्रीन लगा रहता है, ब्यूटीफुल स्क्रीन, और दिन भर की पूजा अर्चा आरती भोग सबका दर्शन होता है। आप अपनी सेवा करते करते अनंत बार दर्शन कर सकते हो, लाइव दर्शन उस दिन का। तो हर प्रकार के तरीके हैं, आपको सेवा छोड़ के भागने की जरूरत नहीं, भगवान आपके दरवाजे पर व्यवस्था करते हैं। ये हो गया 18वां। 19वीं बात, आषाढ़ी एकादशी में क्या ऐसा है कि जिसमें सब लोग भाग के आते हैं इधर, क्योंकि आषाढ़ी एकादशी को भगवान गोपवेश में आते हैं, गोप भाव में आते हैं। वर्ष भर यहाँ पर रहते हैं तो ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, क्योंकि वो द्वारका से आए हुए हैं। द्वारका एक वैकुंठ है ना, यहाँ पर भी वैकुंठ कहा गया, यहाँ पर गोलोक नहीं कहा गया, ये ऐश्वर्य स्थान है भगवान का, अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ में रहते हैं यहाँ पर वो। लेकिन आषाढ़ी एकादशी को गौचारण के मूड में रहते हैं वो, इसलिए उस दिन को उनको दर्शन करने के लोग यहाँ पर आते हैं। ये उसका महत्व है। 19वां महात्म्य हो गया। 20वां महात्म्य क्या है, अब ये थोड़ा समझना आपको जरूर है टेक्निकली, कि एक भगवान का धाम है उसको कांचन ब्रह्म कहते हैं, वो कौन सा है, तिरुपति, क्योंकि यहाँ पर ऐश्वर्य का उन्होंने पूरा प्राकट्य किया है, इतना धन दौलत है, इतनी ऐश्वर्य है। बड़ी लंबी कहानी है पद्मावती की और भगवान के विवाह की, तो वो उसको कांचनपुरी कांचन ब्रह्म कहते हैं। फिर जगन्नाथपुरी को क्या कहते हैं, अन्न ब्रह्म, जहाँ पर भोजन की लीला है भगवान की, वो भी ऐश्वर्य संपन्न है। और तीसरा है नाद ब्रह्म, वो पंडरपुर है। तो नाद ब्रह्म का अर्थ यह है कि यहाँ पर कीर्तन का बहुत महत्व है, जितना महत्व कीर्तन का यहाँ है वो बाकी जगह पर, सब जगह कीर्तन का महत्व है, लेकिन ये विशेष रूप से यहाँ पर। देखो आप एकादशी को आएंगे ना, केवल लोग 24/7 गाते रहते हैं, कहीं से भी गुजरो सब जगह टाल मृदंग के सब चलते रहते हैं, अभंग गाते रहते हैं। कोई महाराज खड़े हैं तानपुरा लेके और खड़े खड़े कीर्तन कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, इस तरह से चलते रहते हैं पूरी तरह से। तो ये होगी 20वीं बात। हाँ, 20। अभी 21वीं बात जो है उसमें आपको समझाया गया है कि ये नाद ब्रह्म का क्या महत्व है, नाद को कैसे समझें। सब लोग सुन रहे हैं क्या अटेंशन में? स्वर, ध्वनि, ध्वनि, शब्द और ब्रह्म, ये सब नाद के ही स्वरूप हैं। और कली काल नाम रूप है कृष्ण अवतार, तो भगवान भी नाम के स्वरूप में प्रकट हुए हैं कलयुग में। तो 10 प्रकार के नाद भी बहुत मुश्किल है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 10 प्रकार के नाद हंस उपनिषद में वर्णन किए गए हैं। वो क्या क्या है? चिनीति, चिंसणी, कंठनाद, शंखनाद, तंत्रीनाद, तालनाद, वेणुनाद, मृदंगवाद, भेरीनाद और मेघनाद। ये 10 प्रकार के नाद वर्णन किए हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाद जो है भगवान नाम का नाद, ताल मृदंग का नाद, कीर्तन का नाद। तो ध्वनि जब होता है ना कोई, तो उसके 3 अंग होते हैं ध्वनि में, उसमें अंतर्भूत है। वो क्या है? गीत, गीत जो हम गाते हैं, ठीक है, जिसको हम कविता कह सकते हैं, अभंग कह सकते हैं, भजन कह सकते हैं, गीत के रूप में हम भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसमें भी ध्वनि। फिर वाद्य, यानी टाल मृदंग भेरी दुंदुबी, और तीसरा है नृत्य, उसमें भी ध्वनि होता है, घुंघरुओं का, कंगन का, कंगन का पायल का। तो ये तीनों प्रकार के नाद जो है वो पूर्णतः यहाँ पर प्रकट है पंडरी में, गीत नृत्य वाद्य। गीत भगवान के नाम का, वाद्य टाल मृदंग का, और नृत्य भगवान करते रहते हैं, भगवान के भक्त यहाँ पर। विठ्ठल नाम गजरी अवगी दुमदुमली पंडरी, ऐसा है। और भगवान क्या कहते हैं, ना हम वसामी नैक वैकुंठे, ना हम वसामी न वैकुंठे, न च योगी नाम अपि हृदये च, मत भक्ता गायत्री यत्र गायत्री मत भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। तो भगवान का सान्निध्य आपको चाहिए तो आप कीर्तन कीजिए, तो भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं। फिर बहुत ना सुंदर वर्णन दिया यहाँ के कीर्तन का, कि यहाँ पर जब कीर्तन होता है ना तो सोलर सिस्टम जो है ना, जो सूर्यमंडल कहते हैं उसको, उसको भेद कर वो नाद परे चले जाता है जब कीर्तन भगवान के नाम का होता है। खास करके धाम में जब हम गाते हैं भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, तो वो सृष्टि के कवच को भेद कर परव्योम में चला जाता है। इसलिए हमेशा सदैव हम बोलते रहते हैं कि कीर्तन ध्यान के करो, पुकारो पुकारो। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नाद साक्षात गौलोक धाम तक पहुँचता है, और ये सत्य है, तो श्रद्धा होनी चाहिए उस बात पर। जो व्यक्ति भाव विभोर होकर यहाँ नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो पाप पुण्य से रहित होकर सीधे भगवत धाम पहुँच जाते हैं, ये स्कंद पुराण में लिखा है। इसका आगे जो है एक 17वीं बात है जो मैं आपको बताता हूँ ठीक से, 17th पॉइंट की लग रही है। हाँ वही है जो मैंने बताई, जो पृथ्वी पर विमान की तरह विराजमान है, वही बात यहाँ पर श्लोक के द्वारा बताई गई है। नास्ति नारद, हे नारद, नास्ति क्षेत्रस्य भू संबंध कदाचन, भूमि का संबंध नहीं है इसके अंदर। वितस्ति मात्रस्थः त्यक्त्वा तिष्ठन्त्य एवं एव रत, मतलब वीट पर यहाँ पर भगवान खड़े हैं, उसको भगवान खड़े भी हैं, वो भी विमान पर खड़े हैं। ज्योतिर्मयानी यानानी तथा नभसी भांति वही, ज्योतिर्मय यान है ये भगवान का जिसमें भगवान खड़े हैं, एवं ज्योतिर्मयम नभ्य सेव भासते, ये सब लगता है कि आकाश में ही खड़े शंकर जी। ये पूरा जो पांडुरंग महात्म्य है ना पद्म पुराण का, ये शंकर जी नारद जी को वर्णन कर रहे हैं, ऐसा है। ओके, तो कितना पॉइंट हो गया अपने, 22वां पॉइंट। यहाँ के भगवान के दर्शन मात्र से ही, स्मरण मात्र से, दर्शन मात्र से संसार से लोग मुक्त हो जाते हैं। 23वां पॉइंट देखिए, यहाँ के भगवान का नाम उच्चारण करने से सारे वाचा के दोष समाप्त हो जाते हैं, और यहाँ पर पांडुरंग का दर्शन करने से आचरण में, व्यवहार में जो दोष है वो भी समाप्त हो जाते हैं। सो वचन यानी वाचा भगवान की स्तुति से समाप्त हो जाता है, और केवल दर्शन करने से क्या होता है, हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाता है, बिहेवियरल प्यूरिफिकेशन। और वाणी में जो दोष है वो भगवान की यहाँ पर स्तुति करने से नष्ट हो जाता है। 23वां पॉइंट। 24वां पॉइंट है कि 60,000 वर्ष तक देवी देवताओं का दर्शन करने से जो लाभ होता है वो यहाँ पर एक बार पंडरपुर में आकर विट्ठल का दर्शन करने से होता है। वाचा मतलब हम लोग टीका करते हैं लोगों की, निंदा करते हैं, गलत बात बोलते हैं ना, दोष देखते हैं लोगों के, उसको वाचा दोष कहा गया है। वो हकलाना और स्टैमरिंग वो भी एक दोष है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये, अच्छी जिह्वा है आपकी, अच्छी वाणी है, फिर भी लोगों की निंदा करने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। फिर होगी 25वीं वाली बात, अभी ये ना ये बात स्वयं पद्म पुराण में भी कही है और तुकाराम महाराज ने अपने अभंग में लिखी है। वो कहते हैं कि पंढरपुर के भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है ये सोचना महत अपराध है। ऐसा व्यक्ति जो पंढरपुर की मूर्ति प्रतिष्ठापित है ये सोचता है वो नरक में चला जाएगा। तीर्थ क्षेत्रे स्थिते विष्णु शिलाबुद्धिम करो तो वा, शिलाबुद्धिम यानी का ये पत्थर है, ये शिला है, इसको शिला बुद्धि से देखना यानी नरकवास में जाना, नरक का टिकट बुक करना। स याति नरकम घोरम पुनरावृत्ति अवर्जितम, बार बार पुनरावृत्ति होगी उसके जन्म मरणों की, बार बार आएगा, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, नरक में जाएगा, दुख भोगेगा। अगर इस पांडुरंग की मूर्ति को अगर शिला बुद्धि से देखेगा। 25वां 26वां जो है कि इस क्षेत्र में चंद्रभागा के किनारे जो पत्थर है, जो वालों के कण हैं, वो सब देव ऋषि और देव ऋषि सब देवता और सब भक्त लोग, भगवान के वैष्णव जो है, संत लोग, ऋषि ऋषिगण, वो सब यहाँ पर चंद्रभागा के किनारे रेती के रूप में रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा ना चलता हूँ उसके ऊपर प्रार्थना करते हुए चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोटि 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 छोटे छोटे कंकड़ हैं, वहाँ पर रेती भी है चंद्रभागा किनारे। और 27वां जो है महात्मा इसका कि गंगा सागर, गंगा सागर किधर है, क्या है वो, गंगा जी समुद्र को मिलती है, बहुत पवित्र स्थान है वो, वहाँ पर कपिल देव जी ने भी तपस्या की थी, कपिल देव हमारे जो भगवान के अवतार हैं। और वहाँ पर अगर आप, हरे कृष्णा, इसकी बैटरी समाप्त हो गई इसकी, तो वहाँ पर जो बैठकर कपिल आख्यान का श्रवण करता है, कहाँ पर, गंगा सागर पे जो कपिल देव ने दी हुई शिक्षा जो है उसका अध्ययन करता है, क्या बताएं आपको, क्या बताएं। साधारण तौर पर जब व्यक्ति परिपूर्ण होता है तो वैकुंठ का विमान आता है उसको लेने के लिए। आप आगे बैठो ना, पीछे क्यों बैठे। साधारण तौर पर जो व्यक्ति परिपूर्ण होता है तो उसको लेने के लिए वैकुंठ का विमान आता है। उसके अंदर चार दूत होते हैं विष्णु के, जो वहाँ के प्रतिनिधि होते हैं। जब व्यक्ति गंगा सागर में बैठकर कपिल देव का आख्यान सुनता है तो साक्षात गरुड़ पर बैठकर विष्णु भगवान स्वयं उनको लेने आते हैं, ऐसा वर्णन दिया है, ऐसा महात्म्य उसका। तो मैंने गंगा सागर का महात्म्य बताया आपको, लेकिन गंगा सागर के संगम पर कुरुक्षेत्र में, महाक्षेत्र में, केदारनाथ में, नैमिषारण्य में 1000 वर्ष निवास करने पर जो लाभ होता है वो केवल एक बार विट्ठल के पास आने में होता है। ये स्कंद पुराण में लिखा है, मैं एक बार दोहराता हूँ आपको। गंगा सागर में रहते हुए या कुरुक्षेत्र का दर्शन करते हुए, महाक्षेत्र का पता नहीं क्या आप कह रहे हैं यहाँ पर, केदारनाथ नैमिषारण्य यहाँ पर 1000 वर्ष निवास करने पर जो लाभ होता है वो केवल एक बार विट्ठल का दर्शन करने से होता है। और आखिरी बात जो मैंने आपको कल बताई, दोबारा बताने में कोई संकोच नहीं है, वो ये है कि जब धाम में हम कोई अपराध करते हैं, कैसा है ना, हम लोग अपराध करने की हमारी आदत है, इसलिए ये बंद क्यों रखा है, इसको जमीन पर रखो ना, उसको अब ऊपर रखो, जमीन के ऊपर आसन दो उसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, कोई बात नहीं। तो जो अपराध करने की आदत का आदि है वो सब जगह अपराध ही करते रहेगा। मुंबई में आदत है, हैदराबाद में आदत है, दिल्ली में आदत है उसको, तो यहाँ पर आकर भी वही आदत चलती रहेगी। तो वो जो आदत वहाँ पर है हमारी अपराध करने की, तो उसका एक प्रकार का नुकसान होता है शहर में करेंगे तो। लेकिन जब अपराध हम आकर यहाँ करते हैं धाम में तो वो बहुत भयंकर होता है, उसको कहते हैं वज्रलेप। वज्रलेप का व्याख्या क्यों किया गया है, क्योंकि वज्रलेप ऐसा होता है, वज्रलेप करने से वो निकलता नहीं कभी, तो एक होता है पाप और एक होता है अपराध, उसका फर्क पता है आपको? पाप अर्थात वो मांसाहार करना, जुआ खेलना, नशा करना, व्यभिचार करना, ये ना स्वयं के साथ संबंधित होता है। मतलब मैं व्यभिचार कर रहा हूँ, मैं नशा कर रहा हूँ, मैं जुआ खेल रहा हूँ, तो मेरा ही नुकसान कर रहा हूँ। अपराध में दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाता है और दूसरा व्यक्ति दुखी हो जाता है या उसका अपराध करते हैं। अपराध जो है ना, वो मैं मुझे मेरा क्षेत्र छोड़कर किसी और को तकलीफ दे रहा हूँ, और उसमें भी अपराध ज़्यादा खतरनाक होता है, वैष्णव अपराध। तो वैसा अपराध हाँ यहाँ पर आके करेंगे ना, तो वो वज्रलेप माना जाता है। लेकिन चंद्रभागा में स्नान करने से वज्रलेप का अपराध भी नष्ट हो जाता है। द्वारका में गोमती और समुद्र के संगम में करने से भी नष्ट हो जाता है। और क्या बताया था मैंने उस दिन? जगन्नाथपुरी के समुद्र में, जगन्नाथपुरी में भी अपराध करेंगे आप तो जगन्नाथपुरी के समुद्र में स्नान करने से वो अपराध नष्ट हो जाता है, वज्रलेप अपराध। इसलिए समुद्र के पास जाना ही चाहिए जगन्नाथपुरी में स्पर्श करने के लिए। अगर स्नान करना सुरक्षा के अंदर नहीं है समझो, क्योंकि वहाँ पर स्नान करना बहुत खतरनाक है, तो सुरक्षा दृष्टि से अगर आप नहीं जाना चाहते और नहीं जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से जाकर जल को स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि वो महोदधि है। महोदधि यानी सारी नदियाँ वहाँ पर आके मिल जाती हैं। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं स्नान किया उसके अंदर, हरिदास ठाकुर ने स्नान किया है, तो और परम 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 पवित्र स्थान बन जाता है वो। तो वैसे ही चंद्रभागा में स्नान करने से वज्रलेप नष्ट हो जाता है। इसमें एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आके वज्रलेप तो निकाल दिया आपने, दोबारा वज्रलेप बना सकते हैं आप? यस। प्रवृत्ति नष्ट नहीं होगी तो क्या फ़ायदा है? नदी में स्नान करने में और भजन भगवान का करने में क्या फ़र्क है? नदी में स्नान करने से जो फलित पाप है, फलित पाप वही नष्ट होते हैं। फलित पाप मीन्स फ्रुक्टिफाइड सिंस। जैसे मुझे आपको डायबिटीज है, ये हमारे पाप का फल हम लोग ऑलरेडी भोग रहे हैं। और एक होता है पाप प्रवृत्ति, पाप करने की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी, प्रोक्लिविटी कहते हैं उसको, वो नष्ट नहीं होती है नदी में स्नान करने से।
तो फलित पाप मीन्स क्या?
फलित पाप मतलब मैंने बताया ना अभी आपको, डायबिटीज है, ऑलरेडी यू आर सफरिंग फ्रॉम द सिन। फल जिसका पाप का जो फल है ऑलरेडी आप भोग रहे हो। जैसे घर में कभी मेरे भाई एक बार सो रहा था, उठ के मार्केट चला गया तो छत ही गिर गया उसका घर पे जहाँ पर वो सोता था। तो वो एक बार दूसरा भाई अमेरिका से आया था उसका घर पे आया तभी तो पूरा फैन जो है जमीन पे गिरा था, सीलिंग को लेके गिरा था ऑलरेडी। तो ये क्या है, ये कोई फल है उसका ऑलरेडी, उसको भोगना है, अभी उसको रिपेयर करना है, वो घर में रह सकते नहीं है, क्या नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। इस प्रकार के जो आप ऑलरेडी भोग रहे हो उसको फलित पाप कहते हैं। और आगे जाकर कुछ पाप भोगेंगे हम जो अभी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी समझो कोई बच्चा है, समझो अभी हमारा बच्चा इधर खेल रहे हैं, हाँ, उसका शादी होने के बाद में उसको उसकी पत्नी का देहांत हो जाएगा समझो, तो आज वो नहीं है ना, शादी कहाँ हुई है, पत्नी को देखा किधर है, तो वो अभी कूट रूप में है, यानी अभी अकाउंट में है वो, लेकिन फलित नहीं हुआ है। जब विवाह होगा, पत्नी आएगी, तब ये पाप फलित हो जाएगा, एक दिन उसका फल भोगना पड़ेगा। समझ में आया आपको? और एक होता है बीज, यानी पाप बीज रूप में होता है। जैसे समझो अभी कोई व्यक्ति है जो भी छोटा नन्ना बालक गोद में है, वो 50 वर्ष के उम्र में किसी का खून करेगा, अभी तो बालक है, अभी तो उसमें कुछ प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि तो बीज रूप में है वो। जैसे 45-50 का हो जाएगा ना, तो किसी के प्रति दुश्मनी, शत्रुता उसके मन में पैदा होगी, और 50 साल की उम्र में वो उसका खून कर देगा। तो एक है बीज, एक है कूट, कूट यानी प्रवृत्ति, पाप करने की आदत या प्रवृत्ति, या ऐसे देखेगा तो भी जलेबी देखेगा तो तुरंत चोरी करके खाएगा, वो उसकी प्रवृत्ति है, और वो प्रवृत्ति की वजह से वो जलेबी चोरी करके खाएगा वो पाप है, और उसके बाद में डंडे गिरेंगे उसको पाप फल कहते हैं। पाप यानी वो चीज़ करना जो नहीं करना चाहिए, और पाप का फल यानी उसका फल, जैसे आपकी शुगर बढ़ेगी या चोर करके आपको पकड़ेंगे और जेल में डाल देंगे, और या तो पीटेंगे, वो पाप का फल हो गया। जलेबी खाना चोरी करके वो पाप हो गया, और खाना चाहिए खाना चाहिए, कहाँ जलेबी मिल रही है, वो प्रवृत्ति हो गई। और बीज मतलब उसका सार आपके हृदय में है। तो चार प्रकार के पाप होते हैं। नदी में स्नान करने से केवल 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 पाप के फल नष्ट होते हैं। आप पाप करेंगे तो फिर नए फल निर्माण होंगे। आज आपने स्नान किया आज तक के क्लीन हो गए, लेकिन आज कल पाप करेंगे तो वापस। प्रवृत्ति और बीज, आप इधर बैठो मत, इतना सा वाइड रेंज 180 डिग्रीज डिफिकल्ट है मुझे। तो प्रवृत्ति और बीज ये दो केवल भगवान नाम से नष्ट होते हैं। उसका उदाहरण शास्त्र में देते हैं, समझो आपके पास बहुत एक विषैला वृक्ष है और बार बार उसको आप काट रहे हो, पूरा जमीन दोस्त करके काट रहे हो उसको पूरा आरी से, वर्षा गिरती है ना फिर उसके अंदर पत्ते आने लगते हैं। क्यों? आपने उसको समूल नष्ट नहीं किया है, जमीन के स्तर पर आपने काट दिया उसको, लेकिन क्योंकि उसका जड़ अभी तक है, जल मिलते ही उसको पोषण मिलते ही तुरंत वो प्रवृत्ति वापस आ जाती है। तो कोई प्रकार का जो अपना दान पुण्य है, नदी में स्नान है और कोई हवन है, होम है, ये है, पूजा अमुक तमुक जो करते हैं ना, कर्म कांड करते हैं ना, उससे केवल पाप के फलों की नष्टि हो नष्ट हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पाप करने की प्रवृत्ति ही। जब तक वो है तब तक क्या फायदा है? डॉक्टर के पास जाके बार बार दवा लेके आएगा, लेकिन बार बार जाके गलत काम गलत खाते रहेगा तो लूज मोशन चलते रहेंगे उसके। दवा लेकर वो मोशन रोक रहा है आपका, फिर आप जाकर वही पानी पूरी खा रहे हो रास्ते में, फिर जाके बोल रहे डॉक्टर साहब फिर दोबारा हो गया। डॉक्टर को क्या करना चाहिए? फिर दवा देनी चाहिए, लेकिन बोलना चाहिए वो पहले वो पानी पूरी खाना बंद करो, वो प्रवृत्ति जो है उसको नष्ट करो, फिर आपका बार बार मेरा आना नहीं पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर क्या बोलेगा? पानी पूरी खाते रहो और मेरे पास आते रहो और हमारा ये आदान प्रदान चलता रहे। लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति वो बताएगा कि पानी पूरी खाना बंद करो, और कोई होगा पावरफुल आदमी तो पानी पूरी वाले को वहां से भगा देगा, यहाँ खड़ा रहने का नहीं, डॉक्टर का बिल बढ़ रहा है हमारा। पूछो ना।
आपने अभी जस्ट कुछ बताया कि वो बच्चे का 50 इयर्स के बाद करने वाला है, तो ये बीज है तो फिर हमारे हाथ में क्या है?
हमारे हाथ में इच्छा है ना। अगर आप तय करते हैं, निश्चय करते हैं कि मैं नहीं करूंगा, तो वो आप टाल सकते हैं उसको। कर्म में होने पर भी आप टाल सकते हैं। फाइनली स्वतंत्रता जो आपके पास भगवान ने दी है ना, वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। आपकी जो स्वतंत्रता है वो आपको सभी पापों से, पाप प्रवृत्तियों से, जन्म जन्मांतर के आने जाने से बचा सकती है, अगर उसका उपयोग आप सही रूप से करेंगे तो। उसका उपयोग आप अपना निर्णय लेंगे कि मैं आज से भगवान की शुद्ध भक्ति करूँगी, तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है, कोई कर्म का रिकॉर्ड नहीं है, कोई कर्म के देवता नहीं है जो आपको उसमें फंसा सकते हैं। इंडिपेंडेंस आपको यूज़ करना है हर स्थिति में, और उसका हम दुरुपयोग करते हैं, इसलिए हम बार बार फंसते हैं। समझ जाने पर भी, बुझ जाने पर भी बार बार फंसते क्यों हैं? क्योंकि पाप प्रवृत्ति हमारे निश्चय से अधिक शक्तिशाली है। हमारा निश्चय जो है वो कमज़ोर है और पाप प्रवृत्ति ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए विजय पाप प्रवृत्ति की होती है और आप और हम पाप करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब साधना करके, सत्संग करके, शास्त्र सुन के, गुरु जी के शरण लेकर जब हम अपना निश्चय को स्ट्रांग बनाते हैं तो पाप प्रवृत्ति उस पर आगे कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए पाप प्रवृत्ति कहती है करो करो करो, लेकिन निश्चय शक्ति कहती है नो। कष्ट होता है नो कहने में, लेकिन करने में आनंद आता है, लेकिन ना बोलने में कष्ट होता है। फिर भी ना बोलता है वो, नहीं करना है मुझे, तो फिर विजयी होता है और फिर धीरे धीरे बीज भी नष्ट होता है। एस्ट्रोलॉजी का संबंध आपको बता रहा है कि आप क्या हिसाब किताब लेके आए हैं, कौन सा फाउंडेशन लेके आए हैं, ये बिल्डिंग कौन से फाउंडेशन में खड़ी है, आपका जीवन ये बिल्डिंग है और आपका फाउंडेशन जो है ना, आप क्या लेके आए उस पर फाउंडेशन है। आपका जीवन का मतलब क्या है? आपने लाया हुआ हिसाब किताब का एक एक ब्यौरा और आपके आज के कर्म, ये सब मिलकर आपकी आज की जिंदगी है और ये सब बदल सकती है पूरी तरह से। एस्ट्रोलॉजी चार्ट नलीफाई हो सकता है। सर्वधर्मन परित्याज्यम मामेकम शरणम रज। अगर आपने और हमने मिलकर निर्णय लिया कि सब कुछ छोड़कर भगवान को 100% शरणागत होना है, तो कोई भी कर्म आप पर काम करता हुआ नजर नहीं आएगा, और कम करता हुआ नजर भी आएगा आप उससे बिल्कुल अलिप्त रहेंगे, आपको परिणाम फर्क नहीं पड़ेगा उसका, इतने आप उसके ऊपर चले जाएंगे। भगवान ने स्वयं कहा है ना, वो हम अभी भी आसक्त हैं, कष्ट भोग रहे हैं फिर भी छोड़ नहीं सकते हैं, कष्ट भोग रहे हैं फिर भी छोड़ नहीं सकते हैं, त्याग नहीं कर सकते, उसके अनासक्त नहीं हो सकते, इसलिए हम दुख भोग रहे हैं। जिस दिन हमने उसको अपने आप को भावना से अलग कर दिया उस घटना से, आपको घटनाएं तो बदलती नहीं कभी, घटनाक्रम बदलता नहीं दुनिया में, सूर्यास्त सूर्योदय होना ही है, यहाँ पर कुछ बदलता नहीं है, आपको बदलना है और आप बदल सकते हैं और आप पर उसका परिणाम होना भी बदल सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। भगवान नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान नाम की वास्तविक रूप में अगर हमने शत प्रतिशत शरणागति स्वीकार की तो सारा जो बीज है वो नष्ट हो जाएगा, सारा बीज नष्ट हो जाएगा। फिर अभी आप शरणागत हो गए तो अभी तो मुझे जीना है 20 साल, तो वो 20 साल जीवन को जीवन मुक्त जीवन कहते हैं। वो यहाँ पर है, शरीर में जी रहे हैं, लेकिन इस जीवन में नहीं रह रहे आप, इससे परे हो गए, आपका जीवन कंप्लीट भगवान के चरणों में आ गया, काया वाचा मने भगवान के शरण में जाएंगे, तो भगवान के होके रहेंगे तो केवल एक फॉर्मेलिटी रहेगी हमारी, यहाँ जीना, बचा हुआ कालावधि निकालना। तो आज से भी शुरू हो सकता है या 5 साल के बाद भी शुरू हो सकता है या जिंदगी पर रहने पर भी शुरू नहीं होगा वो, क्योंकि हम कहते बहुत हैं और प्रयास भी बहुत करते हैं लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाते हम लोग, निश्चय की कमी होने के कारण। और निश्चय जो है वो सत्संग में ही प्राप्त होता है, श्रवण से ही प्राप्त होता है। बंद हो गया क्या? हाँ, पदम पदम यत विपदम नते शाम। रोज हम चलते हैं, रोज भोजन बनाते, रोज सांस लेते हैं, गर्म पानी से स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, हाथ धोते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं, अनंत कीड़ों को जंतुओं को मार देते हैं। इसलिए कहा है कि भौतिक दुनिया में जो विश्व में जो जीवन है वो पापमय ही होता है, तो उससे कैसे मुक्ति पाए? भगवान नाम लेकर। जानबूझकर हम नहीं करते हैं लेकिन स्व सुरक्षा के लिए किया हुआ वध भी क्षम्य है। अगर आपके ऊपर शायद शेर ने हमला किया और आपने शेर के ऊपर गोली चलाई और शेर मर गया तो आपको शेर को मारने का पाप लगता नहीं है, क्योंकि स्व सुरक्षा में किया हुआ हत्या पाप में गणना में नहीं आता है। तो कोरोना से बचने के लिए हाथ धोना पाप में नहीं आता है, सांस लेने के लिए लेने समय जो मर जाते हैं जंतु वो सांस लेना तो जिंदगी के लिए आवश्यक है तो पाप में नहीं आता है। भोजन करते समय जो जंतु मर जाते हैं वो कैसे पार करते हैं? भगवान को भोजन अर्पण करके उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। और बाकी सारे प्रकार के पाप जो चल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं हम चलते हैं जमीन पे चल रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, या डेटॉल डाल के भूमि को पूछ रहे हैं, घर के पोछा कर रहे हैं, हाँ आंगन जो है उसको कर रहे हैं, या गोबर का लेप कर रहे हैं, सब जंतु ही मर जाते हैं ना उसके अंदर। या अगरबत्ती जला के वो कपूर जलाते तो जंतु हवा के मर जाते हैं। ऐसे जो मिसलेनियस बहुत सारे पाप हैं, सूक्ष्म पाप हैं, वो भगवान नाम का जप करके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम बार बार विनती करते हैं, ध्यान से जप करो, अटेंटिवली जप करो, पुकारते हुए जप करो, एक रूप होके जप करो, नींद आ रहे तो खड़े होके जप करो, चलते हुए जप करो लेकिन पुकारते हुए करो, क्योंकि जैसे बालिका कह रही है बहुत सारे पापों का आपके पीछे ससे मेरा मतलब पीछा है, आपके पीछे पाप आपके पीछे दौड़ रहे हैं हर समय, वास्तविक में आपको उसकी अनुभूति है, तो आपको इससे मुक्त होना चाहिए और भगवान नाम का जप करना चाहिए। मैंने बताया आपको, उत्तर दिया मैंने, डिटर्मिनेशन भगवान के भक्तों के संग से आता है। जो भगवान के भक्त निश्चयी है उनका निरंतर संग करते रहना चाहिए, जिनको आपको श्रद्धा है कि ये व्यक्ति निश्चयी है उसका बार बार संग करना चाहिए, उसके संग में आकर उसको प्रश्न पूछना चाहिए, तो उसका व्यवहार उसका जीवन और उसकी मति का संग करने से आप भी निश्चयी हो जाते हो। समझो आप रेस में दौड़ रहे हो, सब लोग दौड़ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, लेकिन आपके साथ में आपके जैसा व्यक्ति जो है वो आपकी उम्र का है, पीठ दर्द वाला है, वो भी दौड़ रहा है, तो क्या होगा? आप देखेंगे उसका संग प्राप्त होगा, आप भी दौड़ेंगे, मैं तो इससे ज़्यादा बुढ़ी नहीं हूँ, मैं जवान हूँ, ये मेरे से ज़्यादा बुढ़ी है दौड़ रही है। कुछ लोग 78 ईयर्स के हैं वो दौड़ रहे हैं, तो बोले मैं तो 50 ईयर्स की हूँ, चलो आई विल रन। हर चीज़ का आंसर यही है, आपको निश्चय चाहिए तो निश्चय भक्तों का संग करो, हर गुण के लिए यही उत्तर है। आप ढूंढो, आपको प्रामाणिक बनना है तो प्रामाणिक भक्तों का संग करो, सिंसियर लोगों का संग करो। आपको हार्ड वर्किंग होना है तो हार्ड वर्किंग भक्तों का संग करो। आपको अगर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है बहुत उनका संग करो आप, पर आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। दिस इज वेरी सिंपल, भक्ति में हर चीज सिंपल होती है, हम लोग सिंपल नहीं होते, इसलिए हमारे लिए बहुत बार समझ में नहीं आता है कि कैसे करें कैसे करें कैसे करें। ओके, तो अभी इस क्षेत्र में नित्यानंद प्रभु भी आए हैं। नित्यानंद प्रभु यहाँ पर आए थे 1514 में, नहीं चैतन्य महाप्रभु 1514 में आए थे, सॉरी, और नित्यानंद प्रभु का समय नहीं दिया, वो उसके बहुत पहले आए थे यहाँ पर। लक्ष्मीपति तीर्थ नाम के बहुत महान भक्त यहाँ पर आए थे, जो माधवेंद्रपुरी के गुरु हैं, और वो यहाँ पर आके एक ब्राह्मण के घर में निवास कर रहे थे, तो उनको ब्राह्मण के घर पे रहते हुए ऐसा अनुभूति हुई कि यहाँ पर कोई दिव्य बात का मुझे अनुभव हो रहा है, समथिंग डिवाइन इज हैपनिंग हियर। तो ऐसा वो कैसा है ना, जब हमारी आपकी चेतना बहुत शुद्ध होती है ना, तो आपको सूक्ष्म स्तर पर कुछ मैसेज आने लगते हैं, और सूक्ष्मता की दिव्यता को आप समझना आरंभ करते हैं। यू कैन परसीव, हमारी चेतना बहुत नोकदार हो जाती है। मोबाइल में कैसा होता है ना, मोबाइल नया होता है ना, तो सेंसर बहुत स्ट्रांग होता है उसका, वो जहाँ पर भी छोटी भी रेंज होगी तो आपको दो डंडी दिखाएगा, बाकी लोगों को जीरो दिखाएगा, लेकिन नया मोबाइल में दो दिखाएगा वो, क्योंकि उसका सेंसर बहुत स्ट्रांग होता है। जब पुराना होता है तो बाकी लोगों को चार डंडी मिल रही है, आपको एक भी नहीं मिलती, क्योंकि आपका सेंसर जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो आध्यात्मिक सेंसर कब पावरफुल रहता है, जब जीवन बहुत शुद्ध होता है। बोले तैसा साले त्याची वंदा भी पाऊले, जब जिसका व्यवहार और जिसकी वाचा मिलती जुलती होती है तो वो वंदनीय हो जाता है। वैसे व्यक्ति का जो चेतना है वो नोकदार होती है, और उसको दिव्य संदेश लहरियाँ प्राप्त होती रहती है। समझता है कि ये घर में ना बहुत पाप हुआ है, यहाँ पर मुझे बहुत कुंठित महसूस हो रहा है, या किसी घर में जाएंगे बोले बहुत सात्विक वातावरण है, बहुत पवित्र वातावरण है, वो जो सूक्ष्मता है ना उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। तो लक्ष्मीपति तीर्थ जो है वैसे संत थे, उनको वो दिव्यता का अनुभव हो रहा था, और उसी रात को उनको स्वप्न आया, और स्वप्न में बलराम जी आए। कथा में ऐसे ही होता है, जब कथा में होता है ना मूवमेंट, तो हमारा माइंड जो है मूवमेंट के साथ चला जाता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कथा में ध्यान होना चाहिए। मैं सदैव देखता हूँ, पर पीछे कुछ हलचल हो गए तो सबका ध्यान उधर जाता है, कोई लेट आता है तो सब उसको देखते हैं, तो उठ के चला जाता है तो उसको देखते हैं, लेकिन हम सब भूल जाते हैं कि हम कथा सुनने को बैठे हैं, और कितना हमारा ध्यान यहाँ से वहाँ करना कितना आसान है देखो आप। तो सॉरी, मैं बताना ज़रूरी है, क्योंकि हम सबको ये अनुभूति होना ज़रूरी है कि ये कथा रोज नहीं होती है, 24/7 नहीं होती है, कई दिनों में कई एक बार मिलती है, और उसी में हमको कई सारे ऐसे मैसेज मिलते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, और उसमें हमारा ध्यान नहीं लगेगा तो फिर कितना बचा आपके हाथ में सत्संग, एक घंटे का हुआ, आपको कितना मिला, आपने कितना लिया उसमें से, है ना। तो क्या कह रहा था मैं, रात को स्वप्न में बलराम जी आए, बलराम जी दर्शन दिया तो बहुत मोहित हो गए वो, उन्होंने कहा कल आपके पास एक बालक आएगा, उसको आप दीक्षा देना, और कान में उसके मंत्र भी बोल दे, ये मंत्र उसको देना, और भगवान अंतर्धान हो गए, ये रात से व्याकुल हो गए भगवान का दर्शन करके। अगले दिन नित्यानंद प्रभु स्वयं आए, लेकिन किसी को पता नहीं था ये नित्यानंद प्रभु है, बहुत सुंदर तेजस्वी बालक के रूप में आए, इनके चरणों में गिरे, बोले महाराज जी मुझे दीक्षा दे दो, तब वो गदगद हो गए भाव से, क्योंकि स्वप्न में ही था ना कि बालक आएगा, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि बालक ये स्वयं है। बालक के कान में मंत्र दिया और दीक्षा दिया, लेकिन बालक को देखकर पूरे भाव सदगदित हो गए पूरे वो, और रोने लगे। बालक चला गया, फिर भी रोते रहे विरह में उसके, और उसके बाद में भोजन ही नहीं किया उन्होंने, उस बालक को देख के उसकी याद में स्मरण में इतना विरह में गए कई दिन तक भोजन ही नहीं किया। और आखिर में क्या हुआ, वैसे शरीर ही छोड़ने वाले थे, तो फिर बलराम जी स्वप्न में आए, और उनके आंखों के सामने स्वप्न में बलराम जी नित्यानंद के रूप में रूपांतरित हो गए, चेंज हो गए, उन्होंने कहा कि मैं ही था वो। देखो, पहले बलराम जी आए स्वप्न में, बताया कि बालक आएगा, दीक्षा दे दो। लक्ष्मीपति तीर्थ जो है वो माधवेंद्रपुरी के गुरु हैं, वो पंडरपुर में आए एक ब्राह्मण के घर पे, वहाँ निवास कर रहे हैं, वहाँ उनको कुछ इंट्यूशन होता है कि यहाँ पर कुछ डिवाइन घटना होने वाली है, फिर उनको स्वप्न आता है, उसमें बलराम जी आते हैं और कहते हैं बालक आएगा, दीक्षा दो उसको, फिर बालक आता है, उसको दीक्षा देते हैं, लेकिन बालक को देखकर इतना भाव विभोर हो जाते हैं, अन्न पानी सब छोड़ देते हैं और मृत्यु प्राय हो जाते हैं, विरह में इतना व्याकुल होते हैं, इतना रोते हैं। तो फिर बलराम जी दोबारा स्वप्न में आते हैं, और स्वप्न में बलराम जी को देख रहे हैं, उनकी आंखों के सामने स्वप्न में बलराम जी नित्यानंद में रूपांतरित हो जाते हैं, और उनको ये अनुभूति दिलाते हैं कि मैं ही नित्यानंद हूँ, मैं ही वो बालक था और मैं ही बलराम हूँ। तो उनको पता चलता है कि नित्यानंद मतलब स्वयं बलराम जी मेरी से दीक्षा लेके गए। हाँ, भाव विभोर हो गए पूरे वो, और उस भाव विभोरता में कुछ ही दिनों में उन्होंने पंडरपुर में ही प्राण छोड़ दिए, भगवत धाम चले गए बलराम जी के, लक्ष्मीपति तीर्थ। आगे जाकर नित्यानंद प्रभु ने माधवेंद्र पुरी को भी गुरु के रूप में स्वीकार किया है, शिक्षा गुरु के रूप में, ये भी सत्य है। लेकिन जो दीक्षा उनकी हुई वो लक्ष्मीपति से हुई, और गुरु भाई को फिर उन्हें शिक्षा गुरु बनाया। और माधवेंद्र पुरी के अद्वैत आचार्य, बड़े बड़े महान विभूतियाँ उनके शिष्य थे। फिर यहाँ पर सब प्रकार के संप्रदाय के आचार्य आए हैं। हाँ, वो एक है उसमें से वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी यहाँ पर आए थे, अपने शिष्यों को लेकर आए थे। और यहाँ पर हमारा जो मंदिर ना, अभी हम यहाँ पर है ना, थोड़ा सा आगे उनका आश्रम है, तो वहाँ पर आए थे वो। और वो शाम को आए थे, तो भक्तों ने कहा कब जाना है दर्शन करने के लिए, बोले जाएंगे। तो रात उलट गई, तो शिष्य लोग थोड़ा व्याकुल हो गए, महाराज जी विट्ठल के दर्शन कब करना है। तो उन्होंने कहा अभी चलते हैं, आप देखो नाव देखो। तो शिष्यगण नाव देखने गए ना, तो एक बड़ा लंबा चौड़ा आदमी मुकुट पहने हुए, वो कब 50 आदमी के हाइट का होगा, वो नदी के जल के ऊपर से चल के आ रहा है। तो ये भाग गए, बोले महाराज जी कोई व्यक्ति दंड लेके हाथ में नदी के ऊपर से भाग चल के आ रहा है। तो समझ गए वो कि विट्ठल जी स्वयं आ रहे हैं। तो ये भाग के किनारे में आते हैं, तो विट्ठल जी चल के नदी के ऊपर चल के इस किनारे में आते हैं और आलिंगन देते हैं वल्लभाचार्य को। उनका बड़ा दीर्घ संवाद होता है, और उस संवाद में बहुत चुतिया करते हैं वल्लभाचार्य नेचुरली। उसके बाद वल्लभाचार्य को भगवान कहते हैं, मैं देख रहा हूँ भविष्य में तुम्हारे जाने के बाद में तुम्हारा संप्रदाय टूटने वाला है, भंग हो जाएगा तुम्हारा, इसलिए मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप विवाह करो, पत्नी को स्वीकार करो, बालकों को जन्म दो, और उनके द्वारा आपका संप्रदाय चलता रहेगा। लेकिन सन्यासी होने के बाद में आपका संप्रदाय चलने वाला नहीं है, ये मैं देख रहा हूँ। तो भगवान विट्ठल के आदेश से वल्लभाचार्य ने विवाह किया, क्योंकि दो पुत्र की प्राप्ति हुई, गोकुलनाथ जी और विट्ठलनाथ जी, और दोनों को चार चार शिष्य हुए, जो सूरदास, चित्तस्वामी, चतुर्भुजदास, कुंभनदास, परमानंद दास जी, गोविंद दास जी, ये सब लोग उनके आठ शिष्य हुए, अष्टछाप। तो वल्लभाचार्य ने यहाँ पर बैठकर भागवत कथा की है, इसलिए 84 जो उनके बैठकें हैं उसे एक बैठक पंडरपुर में भी है। बैठक का मतलब क्या है वल्लभाचार्य जी का, जहाँ पर उन्होंने बैठकर भागवत किया 7 दिन का, तो वो बैठक के रूप में माना जाए। ऐसे 84 जगह भारत पे उन्होंने 7 दिन भागवत पाठ किया था, ऐसे महान भक्त थे वो। फिर मध्वाचार्य को भी, वो भी यहाँ पर आए, उनके शिष्यों ने यहाँ पर आकर उत्तरादि मठ स्थापन किया। 2 शिष्य थे उनके सन्यासी, उन्होंने आकर स्थापन किया, उनको बहुत बड़ी विनती की। तो आखिरी समय अंतर्दान होने के लिए जब वो जा रहे थे, तो आते हुए वो पंडरपुर आए और यहाँ पर उन्होंने निवास किया और विट्ठल का दर्शन किया। फिर यहीं से वो बद्रिकाश्रम गए, वहाँ से अंतर्दान हुए। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, शिष्यों को बहुत सारे उपदेश दिए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर मठ यहाँ पर बनाया है, नित्य सेवा होती है। रामानुजाचार्य भी यहाँ पर आए, उनका भी यहाँ पर लेफ्ट साइड में मठ है रामानुजाचार्य का, उन्होंने भी यहाँ पर निवास किया है। निम्बार्काचार्य भी यहाँ पर आए हैं, इस तरह से चारों शंकराचार्य भी स्वयं यहाँ पर आए हैं, उन्होंने विट्ठल का दर्शन किया है। इनफैक्ट शंकराचार्य ने एक स्तोत्र लिखा है, पांडुरंगम स्तोत्र, पांडुरंग अष्टकम, वो शंकराचार्य ने लिखा है, पांडुरंग की स्तुति में लिखा है। और फिर हमारे महाराष्ट्र के एकनाथ जी, जनाभाई, जितने भी आप नाम लो, सब लोग यहाँ पर आए, कोई नहीं आया ऐसे नहीं है, महाराष्ट्र के संत सब लोग यहाँ पर आए। जैसे राधा कुंड पे चारों संप्रदाय के संत सभी आकर भजन किया हुआ है, वैसे पंडरपुर भी ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर कोई नहीं आया ऐसा नहीं, सब लोग ने यहाँ पर आके निवास किया। और प्रश्न पूछिए। नहीं, दक्षिण द्वारका क्यों, क्योंकि वृंदावन जो है ना वो माधुर्य धाम है, वो एकमय है, बाकी सारे ऐश्वर्य धाम है, इसलिए दक्षिण द्वारका कहते हैं, क्योंकि ये भगवान का ऐश्वर्यमय स्थान है, भगवान वहाँ पूरे ऐश्वर्य में रहते हैं, एक ही दिन काली गाय चराने के भाव में रहते हैं। हाँ, तो देखो कुछ समय के लिए माधुर्य लीला प्रकट होती है, इसका अर्थ ये माधुर्य धाम नहीं है। अभी एक कल्प में भगवान ने धनुकासुर का वध किया और उसको वध करने के बाद सीधे यहाँ पर आए हैं, तभी रुक्मिणी का कोई संबंध नहीं है, सीधे आके पुंडलिक को मिले। और एक कल्प में द्वारका में थे, वहाँ पर राधा आई और रुक्मिणी नाराज हो गई, फिर ढूंढे ढूंढे आ गए, रुक्मिणी तप कर रही थी यहाँ पर, वो एक कथा है। दोनों कथा सही है, वो हाँ हाँ उसने वो पुंडलिक ने तो यहाँ पर जो है ना वो ऐश्वर्य है लेकिन साक्ष्य भाव भी ज्यादा है भगवान का। तो जब भगवान आए, जैसे हम कल विष्णु पद पे गए थे, तो वहाँ पर भगवान ने गैया भी चराई है, सब प्रकार की लीला भगवान ने की है, सखा भी उनके यहाँ पर घूमते थे, गाय चराते थे। तो उस समय जो भाव प्रकट हुआ है, दहीकाला भी भगवान ने खेला है यहाँ पर, गोविंदा भी खेला है भगवान ने, तो कुछ समय के लिए भगवान ने यहाँ पर वो माधुर्य प्रकट किया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो साल भर यहाँ पर माधुर्य में रहते हैं। चलो चलते हैं अभी वहां पर। तो माता जी ने जो कहा, मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग करता हूँ कि उधर जो आश्रम है वल्लभाचार्य जी का, उसके अंदर एक गुफा है, वहां पर पांडुरंग भगवान की उनकी भेंट हुई थी, वहां पर उनके चरण चिन्ह है। वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, ठाकुर जी की सेवा का बहुत अपरस प्रस का उधर वो बहुत सारा नियम होता है उनका, सोलह अपरस कहते हैं उसको, वो सब कुछ पालन करके जाना पड़ता है। फिर ओके, और कोई प्रश्न है बिफोर वी स्टार्ट? यस, कैसे आ सकती? देखो, आसक्ति को तोड़ना कोई खेल नहीं है, और हम लोग बहुत ही इम्पेशेंट हो जाते हैं, अरे आसक्ति छुट्टी नहीं है, अरे छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है। जैसे किसी को टीबी हो जाता है तो क्या होता है, 9 से 18 महीना ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, और एक महीने के एंड में बोलते डॉक्टर साहब 1 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं। अरे बीमारी आपको ऐसी है, इसका कोर्स ही आपको शुरू में बताया था मैंने, 18 महीने का है, आपको एब्डोमिनल टीबी है, छाती की टीबी का 9 महीने का इलाज होता है, 6 महीने का, एब्डोमिनल टीबी का 18 महीने का होता है, या और कोई हड्डी में होगा तो और ज़्यादा भी हो सकता है, और कोई करेगा आपको MDR टीबी है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, तो आपको और टाइम लगने वाला है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब बीमारी पुरानी होती है तो ठीक करने को भी टाइम लगता है, तो पेशेंट के लिए जरूरी क्या है, डॉक्टर जो कहे उसको श्रद्धा के साथ फॉलो करना है, इम्पेशेंट नहीं होना है, कब होगा, ठीक होने की इच्छा रखना पाप नहीं है, आसक्ति से मुक्त होने की इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन संयम भी बहुत ज़रूरी है। जो इतने जन्मों की हमारी आसक्ति है, ये मत समझना कि आपको इस जन्म की आसक्ति है, ये कुत्ता जन्म में, बिल्ली जन्म में, कीटक जन्म में, पक्षी जन्म में जो भी हमारी आसक्तियां हैं, वही आसक्तियां बीज रूप में यहाँ प्रवेश करती है, फिर अभी वो अभी के बालकों के प्रति प्रकट होती है। आपको लगता है कि मुझे रमा के ऊपर आसक्ति है, ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन ये वास्तविक रूप में आपकी जो आसक्ति की प्रवृत्ति है, ये किसी के व्यक्ति के रूप में प्रकट हो रही है, उसके बाद में वो रमा के बच्चे से भी आसक्ति हो जाएगी, उसके बाद गाँव के घर की भी आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति की प्रवृत्ति हमारी जो है बहुत गहरी है, वो तो उसके लिए साधना एकाग्रता से करनी है, भगवान पर श्रद्धा रखनी है कि साधना करने से निश्चित रूप से एक दिन आसक्ति नष्ट हो जाएगी। और आसक्ति को नष्ट करने का उपाय क्या है, उच्च आसक्ति बना दो, भगवान के ऊपर आसक्ति बनाने का प्रयास करो, भगवान के ऊपर आसक्ति कैसे उत्पन्न करें, उनके बारे में सुनो, उनकी कथा सुनो, बार बार सुनने पर उसके आपको आसक्ति अपने आप बन जाएगी। जितनी आसक्ति आप बनाओगे उतनी ये कम कम होती जाएगी, और जब आसक्ति से ज़्यादा बढ़कर आसक्ति भगवान से होगी तो ये नगण्य हो जाएगी। कभी कभी आसक्तियाँ कम नहीं कर सकते हैं, उसके सामने बड़ी आसक्ति खड़ी करेंगे तो अच्छा रहता है। वो हमेशा एक पजल लेते हैं ना, एक स्टिक निकालते हैं आपके सामने, बोलते हैं इसको स्टिक को न छुए बिना इसको छोटा बनाओ। तो कैसे बनाना होता है, उसके सामने एक लंबी लकीर खींचनी होती है, तो वो उतनी रहेगी जितनी थी, लेकिन लंबी लकीर के सामने वो छोटी हो जाएगी। उसी प्रकार से आपको आसक्ति बहुत मुश्किल लग रही है तो छोड़ना मुश्किल है, उसके सामने भगवान की बड़ी आसक्ति बना दो प्रयत्नपूर्वक, तो भगवान की बड़ी आसक्ति अपने आप उसको छोटी बना देगी और आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देगी। इसलिए लगे रहो भक्ति में, कैसा है ना, उत्साह भी होना चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए। सब कुछ चीज़ कल नहीं प्राप्त होने वाला है, ये ध्यान रखना। लगता तो है कि कल ही प्राप्त हो जाए, नाम तो मिला अभी, गुरु दीक्षा भी हो गई, अब तक प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है, लेकिन जन्म जन्मांतर के अंदर जो घुसा हुआ है, गड़ा हुआ जो बीज है वो कैसे निकलेगा, बहुत गहरा है वो, बहुत गहरा। इसलिए हमको एक ही लग करना चाहिए, सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, अपना काम ठीक से करो। अभी हम जप में सोएंगे और इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे और बोलेंगे भगवान कब आसक्ति मुक्त करोगे, तो कैसे होगा। आप अपना काम परफेक्ट करो, फिर भगवान को अपना काम परफेक्ट करने के लिए छोड़ दो, आप संयम रखो उसके ऊपर, सब कुछ समय पर ठीक हो जाएगा। और हमारे हाथ से फिर गलती और हमारे हाथ से कम एकाग्रता और कम लगन और कम शरणागति होगी तो भगवान कुछ ड्रामा नहीं कर सकते हमारे साथ। कृपा कब होती है, जब हमारे तरफ से 100% योगदान होता है तब कृपा होती है। कृपा अपने आप नहीं होती है, कृपा में डिस्काउंट लेके हमको थोड़ा सा माफ करके कृपा कर दो, ऐसा नहीं होता है। हमारा काम तो हमको पूर्ण करना ही करना है, ठीक है, ओके। हाँ, यस यस।